नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच बीते कई सालों से जो सियासी खींचतान चल रही थी, इस बीच में आज सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर एक अहम फैसला आया है। बंगाल में केंद्र की जांच एजेंसी सीबीआई द्वारा की जा रही 12 मामलों की जांच के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को झटका दिया है और बंगाल सरकार को बड़ी राहत। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी एक याचिका में केंद्र सरकार के उन निर्देशों को चुनौती दी थी जिनके तहत सीबीआई बंगाल में अलग अलग मामलों की जांच कर रही थी, और वो भी तब जब बंगाल सरकार ने 2018 में ही सीबीआई जांच की आम सहमति को वापस ले लिया था। केंद्र सरकार ने दलील दी कि बंगाल की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र की आपत्तियों को खारिज करते हुए इस सरकार बंगाल सरकार की याचिका को सुनवाई योग्य ठहराया और मेरिट के आधार पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 30 अगस्त को अब अगली सुनवाई करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस भूषण आर गवई और जस्टिस संदीप मेहता ने बंगाल की याचिका को सुनवाई योग्य न मानने की केंद्र की आपत्तियों को खारिज कर दिया। जस्टिस गवई ने फैसले के ऑपरेटिव पार्ट को पढ़ते हुए कहा कि याचिका में बंगाल सरकार की दलीलें केंद्र सरकार के निर्देशों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पर्याप्त वजह तैयार करती है। जस्टिस गवई ने खास बात में यह भी कहा कि इस याचिका का संघवाद के विचार पर भी व्यापक असर पड़ेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 8 मई को इस मामले में अपना फैसला रिजर्व रख लिया था और इस बात पर जोर दिया था कि वो कोर्ट रूम को राजनीतिक बहस का अखाड़ा नहीं बनने देंगे और इस मामले में कोर्ट का ध्यान सिर्फ कानूनी सिद्धांतों पर रहेगा, संविधान के अधिकारों पर रहेगा। कोर्ट ने दोनों ही पक्षों के वकीलों को भी निर्देश दिया कि वो राजनीतिक बहस करने से बचे। इस बहस में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और ममता सरकार की ओर से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए थे। एडवोकेट आस्था शर्मा के जरिए दायर की गई बंगाल सरकार की याचिका में दलील दी गई थी कि राज्य के मामलों में केंद्र सरकार की कार्रवाई और सीबीआई का दखल राज्य की संप्रभुता का उल्लंघन है। याचिका में बताया गया कि बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने नवंबर 2018 में सीबीआई जांच की आम सहमति को वापस ले लिया था। इसके बावजूद सीबीआई ने राज्य सरकार की इजाजत के बिना 12 केस वहां पर रजिस्टर किए जो कि केंद्र सरकार द्वारा संविधान का उल्लंघन करना था। बंगाल सरकार ने अगस्त 2021 में याचिका दायर की थी जिसमें दावा किया गया था कि सीबीआई असंवैधानिक तरीके से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रही है और मांग की गई थी कि सीबीआई द्वारा दर्ज 12 केस खारिज किए जाएं और सीबीआई द्वारा नए केस दायर करने पर भी रोक लगाई जाए। इस पर हुई पिछली बहस में राज्य सरकार की दलीलों पर आपत्ति जताते हुए केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि सीबीआई केंद्र सरकार से स्वतंत्र अपना काम करती है। तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की कार्रवाई और पश्चिम बंगाल की शिकायतों के बीच संबंधों पर भी सवाल किए। तुषार मेहता ने बंगाल की याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ कार्रवाई की कोई सीधी वजह नहीं है और सीबीआई एक स्वतंत्र संस्था है जिस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। उन्होंने बंगाल सरकार पर तथ्यों को छुपाने और कोर्ट को गुमराह करने का भी आरोप लगाया था। तुषार मेहता ने यह भी कहा कि इस मामले में बंगाल सरकार ने सीबीआई को पक्षधर नहीं बनाया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई की कार्रवाई को केंद्र सरकार की कार्रवाई नहीं माना जा सकता और बंगाल की याचिका खारिज की जानी चाहिए क्योंकि इस मामले में सीबीआई से राहत की मांग की गई है लेकिन अनुच्छेद 131 के तहत उसे एक पक्ष नहीं बनाया गया है। अनुच्छेद 131 केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों के बीच आपस में विवादों के सुप्रीम कोर्ट द्वारा हल से सीधे तौर पर ये धारा 131 जुड़ी हुई है। तुषार मेहता ने यह भी दलील दी कि पश्चिम बंगाल सरकार ने इस मामले में दर्ज हुए केसों में न्यायिक कार्रवाई का ब्यौरा नहीं दिया है और बंगाल की याचिका को मान्य ठहराना एक खतरनाक नजीर बन सकता है जिससे किसी भी सरकारी एजेंसी को गलत तरीके से कानूनी कार्रवाई में फंसाया जा सकता है। इससे ऐसे मामलों की बाढ़ आ जाएगी। इसके जवाब में बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने सीबीआई की स्थापना से जुड़े दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट यानी डीएसपीई एक्ट यानी दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम का हवाला दिया और इस आधार पर कहा कि सीबीआई केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। सिब्बल का कहना था कि सीबीआई पर इस नियंत्रण के तहत जरूरी है कि जहां राज्यों ने सहमति वापस ले ली है वहां केंद्र सरकार सीबीआई के दखल की इजाजत देने से पहले राज्यों की सीमाओं का सम्मान करे। कपिल सिब्बल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सीबीआई की कार्रवाई असंवैधानिक है और केंद्र सरकार के इशारे पर की गई है जो सीबीआई पर सीधे तौर पर नियंत्रण रखता है। ये मामला कानूनी अधिकारों और संघवाद के न्यायिक अतिक्रमण के मुद्दों से सीधे तौर पर जुड़ा है। वैसे आपको ये जानकारी दे दें कि 20 दिसंबर 2023 को संसद में एक लिखित जवाब में केंद्र सरकार ने सूचित किया था कि पश्चिम बंगाल समेत 10 राज्यों ने आम सहमति यानी जनरल कंसेंट को वापस ले लिया था। जनरल कंसेंट का अर्थ यह है कि केस टू केस बेसिस पर राज्य सरकार से सीबीआई को अनुमति की जरूरत नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे लीगल अफेयर्स एडिटर आशीष भार्गव।
एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ी राहत दी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसकी जो याचिका है वो सुनवाई योग्य है, जिसमें उसने कहा था कि 2018 में उसने जो सीबीआई जांच की सामान्य सहमति वापस ले ली थी उसके बावजूद सीबीआई मामले दर्ज कर रही है और जांच कर रही है। यहाँ पर केंद्र सरकार की तमाम दलीलों को जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने नकार दिया है, दलीलों को खारिज कर दिया है कि इस मामले में जो मूल मुकदमा दाखिल नहीं हो सकता क्योंकि केंद्र को पार्टी नहीं बनाया जा सकता। इसकी वजह यह है कि सीबीआई जो है वो केंद्र के नियंत्रण में नहीं है, कि सीबीआई जो है एक स्वतंत्र निकाय है। जांच कैसे करनी है, किन मामलों की जांच करनी है, किस तरह जांच आगे बढ़ेगी, ये तमाम चीज़ें इसमें केंद्र का कोई दखल नहीं है। प्रशासनिक जो दखल ज़रूर है केंद्र सरकार का, प्रशासनिक वो सीबीआई का कामकाज देखती है लेकिन दिनों दिन रोजाना के जो कामकाज है और जांच आदि को लेकर उसका कोई दखल नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एक्ट है उसके मुताबिक केंद्र सरकार जो है वो सीबीआई की जो है प्रशासनिक अधिकार उसके पास हैं और सुपरविजन का काम भी उसके पास है सीबीआई का लेकर, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि केंद्र सरकार का इससे कोई लेने देना नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की ओर से तुषार मेहता की जो सोलिसिटर जनरल की दलील को मान लिया कि जो जांच आदि हैं, जो मामलों की जांच आदि हैं, मुकदमे आदि जो वो करती है उसमें केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं है। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो मूलवाद है पश्चिम बंगाल का, इस पर सुनवाई होगी और कानून के मुताबिक इस पर आगे बढ़ा जाएगा। अगस्त महीने में इस मामले की अगली सुनवाई होगी। तो यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल सरकार का ये कहना था कि सामान्य सहमति 2018 में वापस हो गई के इशारे पर सीबीआई लगातार मुकदमे दर्ज कर रही है और फिर पीछे पीछे ईडी भी चली आती है और ये संघवाद का अपमान है, उल्लंघन है संघवाद का। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये मुद्दा जो है वो उसका संघवाद पर एक व्यापक असर पड़ेगा, इसलिए इस मुद्दे की बिना गुण दोष देखे हुए बिना मेरिट पर हम आगे इस पर मामलों की सुनवाई करेंगे। तो निश्चित तौर पर बहुत सारे मुकदमे की वहाँ पर हुए हैं पश्चिम बंगाल में जिनकी सीबीआई जांच कर रही है और अब सुप्रीम कोर्ट ने तय कर लिया इस मामले की जांच आगे बढ़ेगी। केंद्र सरकार के लिए एक ये झटका है कि केंद्र सरकार की इस दलील को नकार दिया गया है कि ये मामला जो है वो मूलवाद का नहीं है और केंद्र को इसमें पार्टी प्रतिवादी नहीं बनाया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर अब जो आने वाली सुनवाई होगी उसमें वो काफ़ी अहम होगी और एक बड़े सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा कि क्या जिन राज्यों में सामान्य सहमति सीबीआई से वापस ले ली गई है सीबीआई जांच की, क्या उन मामलों में सीबीआई जांच आगे कर सकती है, क्योंकि ये अकेला ऐसा राज्य नहीं है पश्चिम बंगाल, और भी कई राज्य हैं जिन्होंने अपनी सामान्य सहमति वापस ली है। तो इंतजार अब अगली सुनवाई का करना होगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।
जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बंगाल की याचिका को सुनवाई योग्य ठहराने के फैसले का तृणमूल कांग्रेस ने स्वागत किया है और इसे संविधान की जीत बताया।
1963 में जो सीबीआई तैयार हुआ था, आज वो सीबीआई बीजेपी का एक ट्रस्टवर्दी पॉलिटिकल विंग बन गया और वो चुन चुन के ऑपोजिशन रूल स्टेट में बीजेपी का बीएसपी वो काम करते हैं। हम लोगों ने देखा है 2018 में नवंबर महीना में पश्चिम बंगाल ये जो जनरल कॉन्सेंट सीबीआई के लिए था विदड्रॉ किया है, वो ये लोकसभा में भी सबमिट कर दिया गया था। तमिलनाडु तेलंगाना ऐसे 10 स्टेट जनरल काउंसिल विथड्रॉ किया था, लेकिन इसके बावजूद भी जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जो हर एक राज्यों का अपना अधिकार है, उसको ना मानते हुए जबरदस्ती सीबीआई केस लेके रजिस्टर कर रहा था और इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। इसके खिलाफ हम लोग केस किया था और सुप्रीम कोर्ट इस केस को रिकॉग्नाइज करके सिर्फ ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस का यह विक्ट्री नहीं है, ये विक्ट्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का विक्ट्री है।
दरअसल ये पूरा मामला केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारों के बीच टकराव का है। सीबीआई कहां जाकर जांच करे या ना जांच करे, क्या केंद्र मनमानी करेगा, राज्य सरकार मंजूरी ना दे तब भी क्या सीबीआई जांच करेगी उसके राज्य में जाकर, और क्यों जांच नहीं कर सकती है जबकि वो केंद्रीय जांच एजेंसी है। इसीलिए इसको डिफाइन करना जरूरी है कि कहां पर इस पूरे मामले की एक रेखा होनी चाहिए। तो आइए और इस मामले को समझते हैं। ज्यादा चर्चा के लिए इस वक्त मेरे साथ विकास सिंह, जो कि बहुत वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास सिंह जी, मेरा पहला सवाल तो यही है, सीबीआई के दुरुपयोग के बंगाल के आरोप के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कुछ कहा अपने फैसले में, जिस तरीके से उनकी पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया, आप इसको किस तरीके से देखते हैं?
देखिए, ये मेरे हिसाब से बहुत ही अहम फैसला है इस देश के लिए, क्योंकि हम लोगों ने जब अपना संविधान बनाया तो हम लोगों ने फेडरल स्ट्रक्चर बनाया था। फेडरल का मतलब ये है कि स्टेट की ऑटोनॉमी अलग रहेगी और सेंटर की ऑटोनॉमी बड़े लिमिटेड फील्ड में रहेगी। सेंटर स्टेट के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसीलिए जब ये कानून, जब सीबीआई दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आया, तो उसमें एक कंसेंट लेने का एक प्रावधान रखा गया कि भाई जो स्टेट चाहेगा कि हम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में हम कंसेंट दें, उसी स्टेट में सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर पाएगी, और जिस जो स्टेट नहीं चाहेगा वहां नहीं कर पाएगी। ये पर्पस बड़ा, ये बहुत ही अच्छा इसका सोच था कि ये हमारा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट की ऑटोनॉमी, जहां पर कि अगर स्टेट को लगे कि सीबीआई का दुरुपयोग होने का की संभावना है या सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, तो वो अपना कंसेंट विड्रॉ कर ले या कंसेंट दे ही ना। तो जब 2018 में जब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कंसेंट विड्रॉ कर लिया था, उसके बाद भी तमाम केसेस सीबीआई रजिस्टर कर रही है वेस्ट बंगाल के मामले में, तो वो उनका कहना सही कहना है कि भाई ये गलत है, ये मामले को सुप्रीम कोर्ट एक सेंटर स्टेट डिस्प्यूट के हैसियत से इसको सुनवाई करे। उसकी सूट फाइल की और उन्होंने कहा कि हाँ ये मेंटेनेबल है सूट। अब इसकी सुनवाई का उन्होंने तारीख अगस्त में कोई डेट तय किया है जिसमें सुनवाई करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये एक जो एक लोगों को जिससे रूल ऑफ लॉ है ना, हमारा देश रूल ऑफ लॉ से गवर्न होता है, हम ये मानते हैं कि कानून सबसे ऊपर है, कानून के ऊपर कोई नहीं है। तो आज का फैसला जो है ये इस बात को दर्शाता है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट इस बात को बिल्कुल, इसमें बड़ा ही उसका क्लियर मैंडेट है कि रूल ऑफ लॉ हम फॉलो करेंगे, जो कानून कहता है वही फॉलो करेंगे और कोई उसमें ऊपर नीचे नहीं है, चाहे सेंटर हो या स्टेट हो, हर को अपना जो भी कहना है उसका पूरा कहने का अधिकार होगा, और उस अधिकार के अंतर्गत अगर उनका राइट सही है, अगर उनके केस स्टेट में गलत सीबीआई की हस्तक्षेप हो रही है, तो उसको बंद भी किया जाएगा। तो इसलिए बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत ही सराहनीय और अहम फैसला आज सुप्रीम कोर्ट का आया है।
विकास सिंह जी, नो डाउट संविधान सबसे बड़ा है, देश कानून से चलना चाहिए, लेकिन जो बंगाल सरकार ने कोर्ट में दलील दी कि उसने 2018 में ही आम सहमति, जो जनरल कंसेंट था, उसको वापस ले लिया है, जिसके तहत सीबीआई अब राज्य में दखल नहीं दे सकती थी, अगर ऐसा हर राज्य करने लगे, वो आम कंसेंट नहीं दे, तो सीबीआई तो कई मामलों की जाँच पूरी नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको तो जाँच के सिलसिले में तमाम केसेस में अलग अलग राज्यों में जाना पड़ सकता है, लोगों से पूछताछ करनी पड़ सकती है। आपको लगता नहीं कि उसके कामकाज में दखलंदाजी है राज्य सरकारों के द्वारा?
देखिए, इसका तो बड़ा बहुत ही इसका अच्छा जवाब मेरे दिमाग में जो ये आता है, ये है कि सीबीआई को अपना छवि सेंटर का एजेंसी से निकल के, जैसे आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले सीबीआई को एक केज्ड पैरट कहा था कि वो एक तोता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो सीबीआई को अपनी छवि सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग बनानी होगी। और जिस दिन सीबीआई ने अपनी छवि अलग बना ली और एक जब उसका इन्वेस्टिगेशन में एक कॉन्फिडेंस आए लोगों के दिल में कि सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई स्पोक्स पर्सन या उनका कोई आर्म नहीं है, तो अपने आप सारे स्टेट अपना अपना कंसेंट वापस सीबीआई को दे देंगे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि, क्योंकि सीबीआई के, देखिए सीबीआई के बहुत फायदे भी हैं, जो बहुत तरह के ऑफेंसेस में स्टेट पुलिस के पास उतना इक्विपमेंट या उतना टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं होता कि वो ऐसे टेक्निकल मामले को इन्वेस्टिगेट कर सके जो सीबीआई के पास होता है। तो इसलिए अगर सीबीआई का अगर छवि बन जाएगा सही जी। जो कि सेंटर का, कि वो सेकंड सेंटर का स्पोक्स पर्सन नहीं है या सेंटर का एक एजेंट नहीं है, तो अपने आप सब लोग अपना अपना कंसेंट वापस कर देंगे, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि जो इम्पोर्टेंट मामले हैं, जहां पर कि स्टेट या इंटर स्टेट मामले हैं, या जहां मामले ऐसे हैं जो कि स्टेट के फाइनेंसिस को या स्टेट के इकोनॉमी को या स्टेट के में टेरर फैलाने के उद्देश्य से किया जा रहा है, तो हर स्टेट चाहेगा कि एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी उसको इन्वेस्टिगेट करे। तो वो इमेज बिल्डिंग सीबीआई को अपनी करनी पड़ेगी, सीबीआई को अपना इमेज को सुधारना पड़ेगा, सीबीआई को एक छवि ये दिखानी पड़ेगी कि भाई वो, अब जैसे आज के दिन में आपको उदाहरण के तौर पे देते हैं, जैसे कि मान लीजिए आज के दिन में अगर आप एग्जांपल ले लीजिए केसेस का, तो पॉलिटिशियंस जो अपोजिशन के पॉलिटिशियन है जिन पे केसेस चल रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि गलत चल रहे हैं, बिल्कुल सही चल रहे हैं, चलने भी चाहिए, लेकिन जो अपोजिशन के केसेस पे केस चल रहे हैं उसके मुकाबले में रूलिंग पार्टी के नेताओं पे केसेस अगर आप उसकी गिनती कर लें, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्यों लोगों के मन में ये धारणा आ रही है कि सीबीआई जो है सेंटर का एक नुमिंदा हो गया है। अगर आज के दिन में ये तो सब मानेंगे कि भाई हर पार्टी में करप्शन है, हर पार्टी में फंड कलेक्ट किया जाता है, हर इलेक्शन फंड से जीता जाता है और उस फंड कलेक्ट करने में बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं, मंत्री भी इन्वॉल्व होते हैं, तो अगर ये काम अगर सब कोई कर रहा है, तो फंड कलेक्शन जो एक रीजनल पार्टी करे उसको आप सिर्फ पकड़िए और जो सेंट्रल पार्टी करे उसके तरफ आप देखिए भी नहीं, तो कहीं ना कहीं मन में आशंका आती है कि हाँ ये जो है एक सेलेक्टिव तरीके से, मैं तो चाहता हूं सब पे हो, जो भी फंड कलेक्ट कर रहा हो, जिसने भी गलत तरीके से नाजायज तरीके से लोगों से पैसा उठाया है, चाहे इलेक्शन फंडिंग के लिए ही क्यों ना उठाया हो
जी,
लेकिन तब भी वो चीज तो बिल्कुल गलत है ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, हमारे कानून बिल्कुल परमिट नहीं करता इसको। तो इसलिए अगर ये कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी करता है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी करता है, तो सीबीआई आता है मामले में, और जहां कोई रूलिंग पार्टी सेंटर का करता है तो वहां पर सीबीआई बिल्कुल नजरअंदाज कर देता है, तो इससे कहीं ना कहीं छवि पे उसके चोट लगी है, जो उस छवि को उसको सुधारनी होगी।
ये एक चीज और बताइए विकास सिंह जी, आपकी बात समझ में आ रही है कि आप चाह रहे हैं कि सीबीआई इंडिपेंडेंट हो जाए, किसी के प्रेशर में ना आए, ईमानदारी से काम करे, यही दलील तो आज दी है सुप्रीम कोर्ट में, केंद्र ने यही तो कहा कि सीबीआई तो एक स्वतंत्र संस्था है, केंद्र सरकार के अंदर आती ही नहीं है, उसका कोई नियंत्रण ही नहीं है, क्या आप सहमत हैं?
देखिए अगर केंद्र सरकार इंटरफेयर नहीं करता होता, जो उनका स्टैंड था इसी मामले में, जब इसकी बहस हुई थी, जब रिजर्व हुआ, तो सबसे स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे मेजर ऑब्जेक्शन था, प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन था, जो आज डिसाइड हुआ है कि सीबीआई एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, उसको सेंटर से कोई मतलब ही नहीं है। जब सीबीआई इंडिपेंडेंट एजेंसी है तो फिर ये सेंटर स्टेट डिस्प्यूट आप कैसे बनाना चाहते हैं, यही उनका पूरा आर्ग्यूमेंट इसी पे था। लेकिन अब जजमेंट तो मैंने पूरा नहीं पढ़ाया, लेकिन इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने आज, और कहा क्योंकि सब जानते हैं कि सीबीआई भले एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, लेकिन सीबीआई रिपोर्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ही करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। इसलिए ऐसा नहीं है कि वो सीबीआई बिल्कुल सरकार के उससे निकला हुआ है या इंडिपेंडेंट है। इसलिए अगर सरकार का अगर हस्तक्षेप है सीबीआई की फंक्शनिंग में, या सीबीआई अगर अपने इन्वेस्टिगेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स पे या सेंट्रल गवर्नमेंट के जिसमें वो इंटरेस्टेड है उनके मामले में अगर वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, और सिर्फ रीजनल पार्टीज या स्टेट गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनके ऊपर सिर्फ इन्वेस्टिगेट करती है, तो कहीं ना कहीं ये तो क्लियर है ना कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट होती तो क्यों नहीं सबको पकड़ती, सब तरह के लोगों को पकड़ती, करते क्या है? देखिए आज इन्होंने टेलीफोन पे बात की, इन्होंने एक अपने लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि हर कोई स्नूपिंग कर सकता है। 11 सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस को इन्होंने स्नूपिंग करने का पावर दे दिया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एक नोटिफिकेशन के अंतर्गत। अब ये टैपिंग करते हैं किसी का फोन, तो टैपिंग सिर्फ ऑपोजिशन वाले का करते हैं। अगर वो सब पॉलिटिकल पार्टी जो हम जानते हैं, जो सब लोग जानता है आज के दिन में कि सेंट्रल गवर्नमेंट के भी मिनिस्टर्स पॉलिटिकल फंडिंग एक्सेप्ट करते हैं या करवाते हैं या पॉलिटिकल फंडिंग बनता है, इसलिए अगर वो टैपिंग ही करना है तो सबका करें, लेकिन वो तो नहीं करते। वो करते हैं सिर्फ रीजनल पार्टीज का, जब वो पैसे की बात करते हैं उनको पकड़ लेते हैं, बोलते हैं कि साहब आपका फोन पे कन्वर्सेशन हुआ, लेकिन वही फोन कन्वर्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स का नहीं होता है जिसमें कि पता चले कि उन्होंने भी पॉलिटिकल फंडिंग की है। इसलिए पॉलिटिकल फंडिंग के मामले में खास करके ये बड़ा क्लियर है, बड़ा इससे ज्यादा वो नहीं हो सकता कि जो रीजनल पार्टी करे तो वो क्राइम में फंसे जेल जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट करे तो वो कोई कोई उसके तरफ नजर भी ना उठाए। तो इसलिए कहीं ना कहीं इनके फंक्शनिंग में ये सवाल तो उठते ही है ना बिल्कुल, कि सीबीआई किस तरह से फंक्शन कर रहा है।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए विकास सिंह जी। उम्मीद करनी चाहिए कि जब सुनवाई होगी और फैसला आएगा इस पूरे मामले का, तो केंद्र और राज्य सरकार के जो अधिकार हैं सीबीआई को लेकर, जो उसकी भूमिका है, उस बारे में कोई क्लियर डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट से आ पाएंगे और सरकारें चाहे दिल्ली की हो चाहे राज्यों की हो वो उसको लागू भी कर पाएंगी। और आइए बातें आज के एक दूसरे मुद्दे पर। ये मुद्दा भी जितना कानून की बारीकियों से जुड़ा है उतना ही सियासत से भी उलझा हुआ है। दिल्ली शराब घोटाले में पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत कई नेता प्रवर्तन निदेशालय के शिकंजे में आए, उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उसके घेरे में आ गए और अब पार्टी जो है आम आदमी पार्टी उसको भी ईडी ने इस घेरे में ले लिया है। शराब घोटाला केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की उसमें कई नई बातें निकलकर सामने आई है। अदालत ने कल इस चार्जशीट का संज्ञान लिया और आज इसका ब्यौरा सामने आया है। शराब घोटाले में ईडी ने 232 पन्नों की जो चार्जशीट दायर की है उसमें 38 आरोपियों के नाम है। इसमें 37वें नंबर पर अरविंद केजरीवाल को आरोपी के तौर पर रखा गया है और इस मामले का किंगपिन और मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। इसके बाद 38वें स्थान पर आम आदमी पार्टी को ही ईडी ने शराब घोटाले में आरोपी बना दिया है। देश के कानून के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब भ्रष्टाचार के किसी मामले में किसी राजनीतिक दल को आरोपी बनाया गया हो। ईडी के आरोप पत्र के मुताबिक आम आदमी पार्टी अपराध से अर्जित आय की मुख्य तौर पर लाभार्थी है। साउथ लॉबी की तरफ से आए बतौर रिश्वत 100 करोड़ में से 45 करोड़ का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा के चुनावों में किया, लिहाजा पीएमएलए के सेक्शन 70 के तहत एक कंपनी की तरह राजनीतिक दल आप भी इस अपराध में शामिल है। ईडी ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में यह भी कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संरक्षक होने के नाते पार्टी द्वारा किए गए हर काम के लिए जिम्मेदार है। गोवा के चुनाव में रिश्वत के पैसे के इस्तेमाल की उन्हें पूरी जानकारी भी थी। चार्जशीट के मुताबिक शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने और उनसे कमीशन लेने के लिए बनी शराब पॉलिसी के पीछे पूरा दिमाग अरविंद केजरीवाल का ही था, इसीलिए वो इस पूरे मामले के मुख्य साजिशकर्ता और किंग पिन है। ईडी ने शराब घोटाले से जुड़ी चार्जशीट में कई सबूत भी पेश किए, जैसे अरविंद केजरीवाल और एक आरोपी विनोद चव्हाण के व्हाट्सएप चैट के स्क्रीन शॉट भी है। आरोप है कि बीआरएस नेता के कविता के पीए ने विनोद के जरिए 25 करोड़ 50 लाख रुपए गोवा चुनावों के जरिए आम आदमी पार्टी को पहुंचाए थे। दलील दी गई कि इन चैट्स में यह साफ है कि विनोद चौहान के अरविंद केजरीवाल के साथ अच्छे रिश्ते थे। ईडी ने विनोद के मोबाइल से हवाला के नोटों यानी टोकन के फोटो भी चार्जशीट में लगाए हैं। हवाला से गोवा पहुंचे पैसे को वहां मौजूद चनप्रीत सिंह मैनेज कर रहा था। हवाला के जरिए गोवा भेजे गए पैसे को लेकर विनोद चौहान और अभिषेक बॉन पिल्ले के बीच जो बातचीत हुई उसके सबूत भी ईडी के पास मौजूद है। अशोक कौशिक, जिसने अभिषेक बॉन पिल्ले के कहने पर नोटों से भरे दो बैग अलग अलग दो अलग अलग तारीख पर विनोद चौहान को पहुंचाए, उसका बयान भी ईडी ने दर्ज किया है। ईडी का यह भी कहना है कि शराब नीति बनाने में विजय नायर की आम आदमी पार्टी के एक और बड़े चेहरे हैं, उनकी भी काफी बड़ी भूमिका रही। वो अरविंद केजरीवाल का काफी करीबी है और केजरीवाल के इशारे पर ही काम कर रहा था। आपको बता दें विजय नायर भी इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है। ईडी ने समीर महेंद्रू से पूछताछ के आधार पर यह दावा किया है।
ईडी ने अपनी चार्जशीट में सीधे तौर पर आरोप लगाया कि कथित तौर पर दिल्ली शराब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता अरविंद केजरीवाल हैं। चूंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं और अपराध की आय का पैसा सीधे आम आदमी पार्टी को गया, इसीलिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों इस घोटाले के जिम्मेदार हैं। ईडी ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ के दौरान लगातार गुमराह भी किया है।
उधर आम आदमी पार्टी का आरोप है कि सियासत के तहत उसके खिलाफ आरोप घड़े गए हैं, जबकि बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी की चोरी अब पकड़ी गई है।
आम आदमी पार्टी को तो बिना किसी सबूत के, बिना किसी पैसे की रिकवरी के, बिना किसी मनी ट्रेल के आरोपी बना रही है ईडी। और जहां पे मनी ट्रेल स्थापित है साफ साफ दिख रहा है कि इस तरीके से इन्होंने करोड़ों रुपया भारतीय जनता पार्टी को दिया, भारतीय जनता पार्टी को कब आरोपी बनाया जाएगा, यही सवाल है।
जब भी शराब घोटाले की बात आती है तो आम आदमी पार्टी जनता और मीडिया को गुमराह करने का प्रयास करती है। हमेशा कहती है कि कोई सबूत नहीं है, लेकिन आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ईडी ने एक बहुत ही डिटेल्ड चार्जशीट फाइल करी है और इसके तहत पता चलता है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी न केवल व्यक्तिगत तौर पर शराब घोटाले में करोड़ों रुपए के किकबैक्स लेने में उनकी व्यक्तिगत भूमिका है, बल्कि ये भी कि वो इस पूरी की पूरी कंस्पिरेसी के किंग पिन है।
इस पूरे मामले में एक खास बात यह भी है कि पहली बार किसी राजनीतिक दल को भ्रष्टाचार के किसी मामले में आरोपी बनाया गया है, आज तक कभी भी नहीं हुआ था। इसके लिए प्रवर्तन निदेशालय ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA यानी धन शोधन निवारण अधिनियम के सेक्शन 70 का इस्तेमाल किया है। मनी लॉन्ड्रिंग का सीधे शब्दों में अर्थ है गलत तरीके से कमाए गए पैसे को सही बनाना। PMLA का सेक्शन 70 कंपनियों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों से निपटने से जुड़ा हुआ है। हालांकि राजनीतिक दल कंपनीज एक्ट 2013 के तहत बनी कंपनी नहीं होते, लेकिन सेक्शन 70 की एक व्याख्या कहती है कि सेक्शन 71 के तहत कंपनी का अर्थ है कोई भी कॉरपोरेट और इसमें कोई फर्म या अन्य व्यक्तियों का संगठन हो सकता है। व्यक्तियों का संगठन एक राजनीतिक दल भी हो सकता है। ट्रस्ट और NGO पहले से ही इसके दायरे में रहे हैं। इसी के तहत आम आदमी पार्टी को इस बार ईडी ने आरोपी बना दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पहली बार किसी राजनीतिक दल को इस तरीके से आरोपी बनाया गया है। हालांकि आपको बता दें इनकम टैक्स एक्ट के तहत राजनीतिक दलों की जांच पहले भी होती रही है। इसी मुद्दे पर वरिष्ठ वकील गीता लूथरा ने अपनी हमसे बात की है, क्या कहा आइए सुनते हैं।
पॉलिटिकल पार्टी को पार्टी बनाया है ये मान के कि वो एक कंपनी है, पर मुझे लगता है कि क्योंकि वो नॉन प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव है तो मोस्ट लाइकली वो किसी भी ऐसे केस अगर उनके अगेंस्ट दायर हो तो मुझे लगता है कि उसमें कॉशिंग पॉसिबल है। ये तो एक लीगल आंसर है। और एक एज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ राइट्स आई फील कि ये एक बहुत मुश्किल प्रेसिडेंट होगा अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑल ओवर द कंट्री किसी भी केस में एक पार्टी दूसरी को पार्टी बनाने लग जाए। मुझे लगता है ये प्रेसिडेंट बहुत अच्छा नहीं होगा। अगर हम कंपनी को पार्टी बनाते हैं तो हम कंपनी को कहते हैं कंपनी इज अ पार्टी थ्रू इट्स ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव or through its secretary or through its principal officer. So a company is a legal entity in law. Because company legal entity hai, perhaps argument ho sakti hai ke political party bhi legal entity hai. But mere ko lagta hai ke once it is not for profit, unless there are allegations being made of that nature, mujhe lagta hai ke under by the enforcement directorate, it may not be a very healthy precedent if a political party is made an accused. Ye to kanun ke bahut pehlu honge aur behas hogi. Mujhe lagta hai ke technically party ho sakti hai, but because it's not for profit, the argument will be ke aap inko party kaise bana rahe hain, kyunki it can't be guilty of the offenses under PMLA.
और एक और मामले की ओर आपका ध्यान खींचना चाहेंगे. दिल्ली के रिज एरिया में 1100 पेड़ काटने का मुद्दा कल सुप्रीम कोर्ट के फिर सामने आने वाला है. इस मामले में डीडीए सुप्रीम कोर्ट के इस बार निशाने पर है और उसे कई मुश्किल सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट में इस बार भी देना होगा. इस सब के बीच हम आपको इसी मामले से जुड़ी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इस वक्त दिखाने जा रहे हैं जो बता रही है कि एक तरफ तो पेड़ काटे गए और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना से बचने की कोशिश में दिखावे के पेड़ ट्रांसप्लांट के पीछे छुपने की कोशिश की गई. जी हाँ, पेड़ ट्रांसप्लांट, ट्री ट्रांसप्लांट किए गए हैं दिखावे के. पेड़ों और पर्यावरण के प्रति अधिकारियों के रवैये का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ट्रांसप्लांट के नाम पर सूखे पेड़ मिट्टी में गाड़ दिए गए हैं. देखिए मेरे सहयोगी अश्विनी कुमार सिंह ने और उनके कैमरे ने क्या कुछ कह दिया.
क्या यह पेड़ उसी तरह हरियाली बिखेरेगा जैसा इस मिट्टी पर पैदा हुआ कोई और पेड़ करता? क्या आपको लगता है कि ये पेड़ आगे जाकर हरा भरा होगा? क्या आप मानेंगे कि ऐसे ही ट्रांसप्लांट किए गए पेड़ों से दिल्ली हरी भरी होगी? आपको ये तस्वीरें भले ही परेशान कर रही हों, लेकिन सरकार की फाइलों में आंकड़े तो हरे भरे दिखते हैं. इसलिए बिना अनुमति नियमों के खिलाफ जाकर पहले पेड़ काटे जाते हैं, फिर उस जगह पर ट्रांसप्लांट करके पेड़ लगाए जाते हैं, बस लीपापोती के लिए और थोड़ा देखे तो ये बताने के लिए कि अधिकारी पर्यावरण के लिए कितने चिंतित हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही है. पहले तो पेड़ काटे गए, उसके बाद कुछ प्लांटेशन किया गया, जो पौधे थे उनको ट्रांसप्लांट करने की प्रक्रिया है उसको अपनाया डीडीए ने. और देखिए किस तरीके से खाना पूर्ति उसका एक उदाहरण है. ये है पेड़ नंबर 50, मतलब इस इलाके में लाइन से पेड़ लगाए हैं ट्रांसप्लांटेड. ये 50 नंबर पेड़ है, लगभग 2-3 महीने से ज़्यादा हो गए इन यहाँ इस इलाके में पेड़ लगाए गए. अब देखिए कि एक भी पौधा, इस पौधे पर एक भी हरा पत्ता नहीं, ये पूरा सूखा पेड़ है. ये पेड़ भी पूरा सूख चुका है, पूरी तरीके से सूख चुका है. इस पेड़ पे एक भी हरा पत्ता नहीं है, ये इसकी जड़ भी सूख चुकी है. ये पेड़ नंबर है 49. एक मज़ेदार पेड़ देखिए, ये पेड़ भी कहने के लिए ट्रांसप्लांट किया गया. ये पेड़ देखिए, इसकी लंबाई देखिए, इस पेड़ को देखिए कि पूरा तना इसका सूखा हुआ है. इस पेड़ में कहीं पे भी एक भी हरा पत्ता या हरी जो पेड़ के निकलते हैं पत्ते वो भी नहीं है. पूरी तरीके से पेड़ सूख चुका है, लेकिन सरकार के दस्तावेजों में ये पेड़ एक हरा भरा पेड़ माना जाएगा. इस पेड़ को माना जाएगा कि सरकार ने जो पेड़ काटे हैं उसकी जगह पे जो ट्रांसप्लांट प्लांट किए हैं उसमें इसकी भी गिनती होगी. लेकिन आप ये देख सकते हैं कि जो अधिकारी हैं वो सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं.
ये छतरपुर सतपुड़ी के इलाके में जो पेड़ ट्रांसप्लांट किए गए हैं, ऐसा लग रहा है कि ये सही तरीके से नहीं किए गए हैं. क्योंकि आमतौर पर जब ट्री ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसको जहाँ पर वो पेड़ होता है उसी के नीचे से जड़े काटकर उस पर न्यूट्रिएंट लगाकर रीजेनरेट करने का मौका दिया जाता है. और जब उसकी नई कोपड़ आ जाती हैं, नई पत्तियाँ आ जाती हैं और नई जड़ें निकलने लग जाती हैं नीचे से, तब उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है. फिर उसके सूखने के चांस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं. पर इस केस में देख रहा हूँ कि करीब 150 में से मेजोरिटी पेड़ हैं जो वे सूख रहे हैं, सूख उन पर नए पत्ते नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब यह काम ढंग से नहीं किया गया है।
कहते हैं पेड़ पौधों के अस्तित्व से ही हमारा अस्तित्व है, लेकिन जब जिम्मेदार ही हमारे अस्तित्व को नष्ट करने पर तुले हैं तो क्या कहा जाए। ये एक और वानगी है री ट्रांसप्लांटेड पौधों की। ये पौधा नंबर 127 है। आप देखिए कि नीचे दिख भी रहा है कि ये री ट्रांसप्लांट इस पौधे को किया गया है। ये पेड़ पूरी तरीके से सूख चुका है, लेकिन ये गिना जाएगा, ये गिना गया है कि इस प्लांट को उन्होंने री ट्रांसप्लांट किया है। अब आप पूरा मामला समझ लीजिए, जिसको लेकर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी DDA शीर्षासन करने लगा है। दिल्ली में पहले सड़क के लिए काटे गए 1100 पेड़ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद लाइमलाइट में आया। कोर्ट ने DDA को पेड़ काटने के लिए फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा किसके आदेश पर काटे गए पेड़। कोर्ट ने दिल्ली सरकार DDA से कई सवाल पूछे। 12 जुलाई को होनी है अगली सुनवाई। पेड़ काटने वाली जगह पर किया गया पेड़ ट्रांसप्लांट, सिर्फ खाना पूर्ति के लिए किए गए पेड़ ट्रांसप्लांट। इलाके में लगाए गए सैकड़ों पेड़ सूखे। 10 साल की कम उम्र के पौधों को करना चाहिए ट्रांसप्लांट, विशेषज्ञों ने बताया। विशेषज्ञ कहते हैं कि बड़े पेड़ों का ट्रांसप्लांट नहीं होता सफल। अगर ये विवाद सुर्खियों में नहीं आता तो शायद DDA के लिए बात आई गई हो जाती, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जब इसमें सीधे उपराज्यपाल को लपेट लिया तो मामला पर्यावरण के साथ पॉलिटिक्स का भी हो गया।
सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी हुई है कि यहाँ पे सारे काम बंद कर दो, उसके बावजूद आपने देखा कि बुलडोजरों से काम चल रहा है। आप यहाँ पे मिट्टी के ऊपर इन निशानों को भी देख के कह सकते हो कि अभी तक यहाँ पे काम चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि कितने पेड़ कटे इसका फैसला उन जड़ों और तनों से होगा जो कटे हुए दिखेंगे।
23 जनवरी 2024 को ये फाइल अप्रूव की जाती है, जिस पर गोपाल राय के सिग्नेचर है, अरविंद केजरीवाल के सिग्नेचर है, और LG को फाइल भेजी जाती है। उस नोट में जो आखिरी लाइन है वो मैं आपको एक बार, या तो पूरा एक बार दिखा दें जरा। अब आखिरी पॉइंट पढ़िए, ऑनरेबल LG इज बाउंड बाय एड एंड एडवाइज ऑन दिस सब्जेक्ट। माननीय उपराज्यपाल बाध्य हैं इस एडवाइस को मानने के लिए, और नीचे अरविंद केजरीवाल के सिग्नेचर है। यह है आम आदमी पार्टी का सच।
जैसा हर मामले में होता है, उसी तरह अगर इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार नहीं लगाई होती तो दिल्ली के फेफड़ों को जो शुद्ध हवा मिल रही है शायद वह भी ना मिलती। पर्यावरण का नुकसान पूरी मानवता का नुकसान है, फिर चाहे वो पेड़ काटने वाले हों या इस पर राजनीति करने वाले। मैं अश्विनी कुमार सिंह, NDTV इंडिया के लिए।
तो अश्विनी ने पाया कि वहां पर जो पेड़ लगे हैं वो दरअसल पेड़ नहीं है, पुराने ठूंट लाके लगा दिए गए हैं, टूटे हुए सूखे हुए जिसमें कोई पत्ती नहीं है, कुछ नहीं है, पर आंकड़ों में नंबर पूरे हो गए हैं। तो कहने को सुप्रीम कोर्ट में जब ये रिपोर्ट जाएगी तो कहा जाएगा कि हमने इतने सैकड़ों, इतने करोड़ों, इतने सैकड़ों पेड़ वहां पर लगा दिए हैं और रिज को वापस बहाल कर दिया है। दरअसल रिज का एरिया दिल्ली के लिए लंग्स की तरह काम करता है। साफ स्वच्छ हवा दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पर इसी रिज से निकल कर आती है, वहीं पर इस वक्त पेड़ काटे जा रहे हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट नाराज है। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और खबरें हैं, बने रहिए, तुरंत लौटेंगे। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने विधानसभा में आज अपना पहला बजट पेश किया। ऐसा पहली बार हुआ जब केंद्र के बजट से पहले किसी राज्य का बजट पेश किया गया हो। 4.9 लाख करोड़ रुपए के इस बजट में किसानों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों, कारोबारियों समेत हर वर्ग के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। राजस्थान के बजट को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बात की हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह ने।
मुख्यमंत्री भजनलाल जी, आपको बहुत बहुत बधाई, आपने इतना दूरदर्शी, इतना विजनरी बजट पेश किया है। मैं आज सुन रही थी पूरा बजट, उसको लेकर सवाल करूंगी मैं, लेकिन सबसे पहले मैं जो ज्वलंत मुद्दा है राजस्थान का वो था पेपर लीक, इलेक्शन का भी इश्यू बना था। आपकी सरकार में सिट के आने के बाद में 100 एग्जाम्स हो गए हैं, साफ सुथरी एग्जाम्स हो गए हैं। साथ ही आपने जो युवाओं के लिए जो घोषणाएं की हैं, करीब 10 लाख की नौकरियों की घोषणा की है आपने, इसमें जो युवा वर्ग है उसमें एक नई आशा की किरण हम आज देखते हैं, इसलिए मैं इंटरव्यू युवा वर्ग से शुरू करना चाहती हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि युवा वोटर बहुत अहम रहता है हर चुनाव में, तो युवा वर्ग के लिए आपकी क्या सोच है?
देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, पूर्व की कांग्रेस सरकार में जिस तरह से जो पेपर होता था वो लीक होता था, युवा जिस सपने को देख करके पेपर देता था उनके सपने चकनाचूर हो जाते थे, कई युवाओं ने आत्महत्या भी की, क्योंकि युवा किसान का बेटा मजदूर का बेटा जब पढ़ने आता है तो उसके पिताजी उसको कहां से पैसा लाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, यह हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। मैं गांव से आता हूं, मैं देखता हूं, और उन युवाओं के सपने जब वो पेपर लीक होते तो चूर चूर हो जाते थे, युवा खून के आंसू बहाता था। हमने हमारे संकल्प पत्र में भी रखा है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो युवाओं को, सपनों को चूर चूर करने वालों को हम किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे, और आपने भी स्टार्ट पेपर लीक से की है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमने 100 से ज्यादा ऐसे उन पेपर लीक वालों को गिरफ्तार किया है और आगे भी हमारा चल रहा है। हमने युवाओं को विश्वास दिलाया था कि जिन्होंने युवाओं को सपनों को चूर चूर किया है हम उनको किसी भी तरह से नहीं बख्शेंगे, और हमारी सरकार उस क्षेत्र में काम कर रही है। रहा युवाओं को, राजस्थान के युवाओं को सहारा देने का, मैं आपसे कह सकता हूं किसी प्रदेश की, किसी देश की रीढ़ की हड्डी होता है युवा। युवा आगे होगा तुम्हारा प्रदेश भी आगे होगा। हमने देखा कि पिछले 1.5-2 साल में जिस तरह से युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ, और हमने वायदा किया था कि हम युवाओं को सम्मान देंगे, युवाओं को रोजगार के अवसर भी तलाश करके रोजगार भी हम देंगे, हमने आज कहा है। हम 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी 5 साल के अंदर देंगे, 6 लाख प्राइवेट सेक्टर में हम नौकरी देने का काम करेंगे, और हमने इसीलिए निर्देशित किया है कि युवाओं का एक विज्ञप्ति का कैलेंडर बनेगा, हमें पता रहता है आने वाले अगले महीने में कितने रिटायर होने वाले हैं, 3 महीने में कितने रिटायर होने वाले हैं, 5 महीने में कितने होने वाले हैं, 1 साल में कितने होने वाले हैं, वो भी होंगे, और आवश्यकता अनुसार जो वैकेंसी आएंगे जो बढ़ाएंगे उनको भी करेंगे। हमने ये भी कहा है कि बिना हाथ पैर के काम नहीं चलता है, क्योंकि वैकेंसी हैं, अगर उनको भरा नहीं जाए तो सरकार के जो काम हैं वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाते हैं। तो हमने आज निश्चित रूप से कहा है और आने वाले समय में हम करेंगे, 22,000 युवाओं को हमने नियुक्ति पत्र देने का भी काम किया है, इसलिए पूर्ण रूप से युवाओं के सपने जो देखे हैं उनको पूरा करने का काम हमारी डबल इंजन की सरकार करेगी।
तो आज खबरों की खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, शुभ रात्रि।